أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ماہ رمضان ولایت امام زمانہ علیہ السلام کے سائے میں یہ ہمارا عنوان ہے, اور اس عنوان کے تحت ہم مختلف ٹاپکس پر گفتگو کر رہے ہیں. کچھ انتظامی امور کی وجہ سے آج تھوڑی سی تاخیر ہوئی, اور جو کچھ بھی تھا وہ آپ کے سامنے ہی تھا. بہرحال اگر یہ شریک حیات کا انتخاب جو ہے وہ پہلے دن رکھا جاتا تو شاید آوازات کے چہرے جو ہیں وہ پہلے دن نظر آتے ہیں. خیر, درود بھیجے محمد و آل محمد کا. جوانی کی اہمیت, جوانی اور وقت, کامیاب جوانی, جوانی کے جذبات اور احساسات, اور آج جی دولہا بننے کی باری ہے. شریک حیات کے انتخاب. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی سوال یوں کہوں, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کچھ اس کی ڈیزائرس رکھی ہیں. یہ ڈیزائر, یہ خواہشات, یہ کسی نہ کسی مقصد تک پہنچانے کے لیے ہیں. مثلا انسان کی ناک سیدھی ہے, انسان کا کان سیدھا کیوں نہیں ہے, اتنا ٹیڑھا میڑھا کیوں ہے؟ جیسے کہ کان کی ہڈی ہے, ناک کی ہڈی ایسی کیوں نہیں ہے؟ یہ جوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے, یہ نہ ہوتا تو آپ کیسے کھانا کھاتے؟ ہوتا یہ کیا, میں آپ کو کھلا رہا ہوتا, آپ مجھے کھلا رہے ہوتے, صحیح ایسے ہی کھلاتے ہیں نا. یہ جوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے. یہ کان کی ہڈی نرم ہے اس لیے کہ سونے میں آپ کئی دفعہ کان مڑ جاتا, آپ کو احساس نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ ناک کی ہڈی کی طرح ہوتا تو پہلے دن ٹک سے آواز آتی اور جی کانے ہو جاتے آپ, یا کیا کہتے ہیں اس کو, بہرے ہو جاتے, یا کوئی اور نقص پیدا ہو جاتا. اس کا مطلب ہے کہ کان کی ہڈی کا ایسا ہونا یہ انسان کے لیے بہت قیمتی چیز ہے اور بہت ضروری تھی. آپ کھڑے کیوں, آپ بیٹھ جائیے جی. اسی طریقے سے یہ بھویں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, اتنی گھنی کیوں رکھی, پلکیں گھنی کیوں نہیں رکھی؟ پلکیں گھنی ہوتی تو آپ کے لیے دیکھنا اور اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا. بھویں اس لیے رکھی ہیں تاکہ جو آپ کے پسینے کے قطرے ہوں وہ آپ کی آنکھوں میں نہ جائیں. اسی طرح بہت ساری حکمتیں اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو خواہش دی ہے باہر اس کی تکمیل کا انتظام رکھا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو یقیناً اس کا جواب موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب موجود نہیں ہے, اس کا جواب موجود ہے. اس بنا پر دوست یابی, یعنی دوست کو پانے کی جو حس ہے, جو فیلنگ ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں رکھی ہے. اور کل ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ بہترین دوست اللہ ہے, اہل بیت ہیں, اور وہ علماء ہیں کہ جو تربیت کرتے ہیں, جن سے آپ اپنی پرابلمس سے جا کے شیئر کرتے ہیں. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہنے لگا وہ باہر ملک میں رہتا تھا, آج سے کوئی شاید 25 سال پہلے, شاید تقریباً. اس نے کہا میں نے کئی مرتبہ ایک غلطی انجام دی ہے, اس کی تکرار کر رہا تھا, بار بار کر رہا تھا, اور ہر دفعہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا یہ گناہ جو ہے وہ بخشا نہیں جائے گا. اس نے کہا ایک دفعہ تو میں نے یہ کام کر لیا ہے, لہذا بار بار کرتا ہوں اور بار بار کروں گا, اسی کہ اب گناہ معاف نہیں ہوگا, اب جہنم میں تو جانا ہی, ایک دفعہ کر کے جاؤ یا 10 دفعہ کر کے جاؤ. لیکن جب میں نے اس کو سمجھایا اور اس کو نالج دی تو یقین کیجئے وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا, اور اس نے اس غلطی کو چھوڑا, توبہ کی, اور الحمدللہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑنے والوں میں سے ہو گیا. علماء کہ جو آپ کو گائیڈ کر سکیں, جو آپ کو بتا سکیں, اور وہ دوست کہ جو آپ کے ساتھ आपके आपके मोहल्ले का हो, आपकी क्लास का हो, कोई भी अच्छा दोस्त जो आपको दर हकीकत गाइड करे, बताए। इसलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे मेरा वो भाई पसंद है कि जो मेरी बुराइयों का गुलदस्ता मुझे पेश करे, मेरी बुराइयां मुझे बताए, लेकिन ऐसे बताए कि मुझे बुरा ना लगे। ये एक हुनर, एक आर्ट है कि आप किसी की बुराई उसे बताएं। मुश्किल है ये थोड़ा सा, यानी खुसूसन दोस्त हों और एक दूसरे की इस्लाह करना चाह रहे हों तो उस वक्त अच्छे अल्फाज के कपड़े, उन अल्फाज को पहनाना और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंटेशन के ज़रिए से उसको पेश करना। तो ये थोड़ा सा, यानी उसको एक्सरसाइज चाहिए। उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो इंसान का पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसका शरीक हयात है, उसका जीवन साथी है, उसका वो दोस्त जो ज़िंदगी के सफ़र में उसके साथ साथ है। लेकिन होता यह है कि इस दोस्त की तलाश में जो है या बहुत ज़्यादा जल्दी की जाती है या बहुत ज़्यादा देर की जाती है। यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है, ये दोस्त कब तलाश किया जाएगी जिसके साथ इंसान ज़िंदगी गुजार सके। ठीक है, मगर आप सब जो हैं वो बैचलर हैं, हैं बैचलर हैं, नहीं हैं, सभी बैचलर हैं ना। हाँ, इसको इसको उर्दू में क्या कहते हैं, हैं कंवारे। कंवारे वो होते जिनका कोई किनारा नहीं होता, सही, उनकी कश्ती कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर डोलती रहती, एक साहिल नहीं होता जहाँ पे वो लंगर अंदाज हो जाए। और यही मुश्किल होती है जवानी की, वो कभी इस साहिल पे जा रहे होते हैं, कभी उस साहिल पे जा रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं। बहरहाल ये जो हिस रखी है अल्लाह ताला ने, ये इंतहाई पाकीज़ा तरीन हिस है कायनात की। जितना पाकीज़ा कुरान है, जितना पाकीज़ा काबा है, जितना पाकीज़ा इमामत का अकीदा है, जितनी पाकीज़ा नमाज है, उतना ही पाकीज़ा ये हिस है आपकी, ये आपकी फीलिंग्स हैं। इसकी पाकीज़गी का अंदाज़ा लगाएं आप, यानी ये हिस अगर, ये फीलिंग्स, इसके तहत अगर आपने सही इंतखाब किया तो आपकी क्या है, आखरत संवर जाएगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी ने गलत इंतखाब किया, उसकी दुनिया भी बिगड़ जाएगी, आखरत भी बिगड़ जाएगी। अब आप समझ रहे हैं कि इतना हसास मामला है ये, यानी लाइफ पार्टनर का इंतखाब इतना सेंसिटिव इशू है, इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि इससे आपकी दुनिया बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, और आपके आखरत भी मुतासर हो सकती है। बस शुरू यहाँ से है और फिर बहुत दूर तक जाना है, इसका मतलब है कि बहुत देर के तलाश करो। इसलिए हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई भी शरीक हयात का इंतखाब करना चाहता है तो थोड़ी देर के लिए देखे कि वो किस हार को अपने गले की जीनत बना रहा है, किस हार को अपने गले की जीनत बना रहा है। आप टी शर्ट लेने जाते हैं, अपने दोस्त का भी हाथ पकड़ के ले जाते हैं, चलो जी आज ईद की शॉपिंग करनी है, खुद पहनते भी हैं, घूम घूम के आईने में देखते भी हैं, उसके बाद कहते हैं यार मुझ पर कैसी लग रही है बताओ, पैंट की फिटिंग कैसी है मुझे बताओ, खुद भी देख रहे हैं, दोस्त से भी कह रहे हैं। या मसलन ख़वातीन जाती हैं, किसी और को ले जाती हैं, आईने में खड़े होकर देखेंगी कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, इसका कलर कैसा है, इसका डिज़ाइन कैसा है, इसका कपड़ा कैसा है, ये कौन सी लॉन है, फला है फला है, 10 किस्म की बातें करेंगे। यानी एक जोड़े के लिए, एक पैंट के लिए, एक टी शर्ट के लिए, एक लॉन के सूट के लिए, जूतों के लिए, ये छोटे से स्कार्फ के लिए हम घंटों खर्च करते हैं, करते नहीं करते। अभी करीब आएगा तो आप सब जा रहे होंगे, चल भाई मेरे साथ आ जा, और फिर खुद भी पहन के घूम घूम के देखेंगे और दूसरे को कहेंगे मुझे देखो, ठीक है ना। तो एक सूट के लिए जो 2 साल 3 साल 4 साल मसलन ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ रहेगा, आप 4 घंटे 5 घंटे सर्व करते हैं, एक अच्छा सूट लेकर आते हैं। तो जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया और आखरत में आपका लिबास कहा हो, अंतुम लिबास होना वह होना लिबास लकुम, कि वो तुम्हारा लिबास हैं तुम उनका लिबास हो, दोनों एक दूसरे की जीनत। लिबास क्या होता है? लिबास वो होता है जिससे आप अपने बदन की बरहनेगी को छुपाते हैं, अपने आप को जीनत देते हैं, अपने आप को आराइश देते हैं। उस लिबास की वजह से आप बाइज्जत होते हैं, बामुकाम होते हैं, ठीक है ना। जितना अच्छा देर पा अच्छी जिंस का लिबास होगा उतना ही ज़्यादा देर पा होगा। उसी तरीके से इंसान का शौहर या इंसान की बीवी, इंसान का लाइफ पार्टनर भी उसके लिए इज्जत का सबब है। इसीलिए कहा कि लिबास देख के इंतखाब करो, वो तुम्हारा लिबास हैं तुम उनके लिबास हो। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए, सिर्फ जज्बात में चलचलाओ में नहीं। और इसीलिए कहा गया है कि ज़ाहिरी चीज़ों पे इक्तफा मत करो। क्या कहा गया है? ज़ाहिरी चीज़ों पर इक्तफा मत करो, इसलिए कि ये जो नीड है ना घर बसाने की, मसल मैं अक्सर नौजवानों से जब मजाक करता हूँ कहता हूँ सिंगल हो डबल हो, कहते हैं आका साहब क्या मतलब? मैंने कहा अभी तक एक हो दो हुए, तो मसल वो तो ये एक से दो होने की जो ख्वाहिश है। अब क्या होता है, अब आप अकेले हैं ना, आपका कमरा, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका घर, आपकी दुनिया, आपके रूल, कहते हैं ना इट्स माई रूल, जैसे चाहूँ ज़िंदगी बसर करूँ, ठीक है, इस पर गाने भी आ जाते हैं बड़े बड़े, मेरी ज़िंदगी मुझे गुजारने दो जैसे चाहें गुजारूँ, ठीक है ना। इसी तरह जो हॉलीवुड या बॉलीवुड बहुत सारे गाने जो हैं वो आपको दे देंगे कि टेंशन नहीं है, फ़लाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस किस्म की 10,000 चीज़ें जो हैं वो जी आपके जहन में डाल देंगे कि लड़की नहीं होगी तो टेंशन ही नहीं होगी। हालांकि वो जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि औरत ज़ात टेंशन है, तो वो उस दुनिया की टेंशन है कि जो इंसान खुद अपने लिए जहन्नम बना रहा है। लेकिन जो दुनिया अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई उसमें औरत जहन्नम नहीं है, औरत इंसान के लिए और मर्द उस अपनी औरत यानी बीवी के लिए सुकून का सबब है। तस्कुनु इलैहा, सुकून का सबब हो, जिसे देखना, जिसके बाद बैठना, जिसके बाद टाइम देना सुकून का सबब हो। ये सुकून का सबब शादी के पहले दिन से और शादी के 50वें साल तक कायम रहना चाहिए। जैसे शादी के पहले दिन इतना चल रहा होता है, कोई गड़ा नजर आ जाए, अरे बेगम रुक जाओ जरा देख के चलो, गिर जाओगी गिर जाओगी। अच्छा फिर कुछ साल बाद देख के चलो भाई, उसके बाद कुछ साल बाद अंधी हो गई क्या, नज़र नहीं आ रहा। खौफ, ये मसलन मर्दों का हाल होता है बात, या मसलन एक साहब को कीड़े निकालने की आदत है बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा उनकी बेगम अंडा तल के लाई तो कहा कि ये हाफ फ्राई करके लिए, इसको तो बॉईल करना था। अच्छा जनाब, अगले दिन वो बॉईल करके ले आई, फिर ये इनकी नाक पर गुस्सा तक ले, इसको तो हाफ फ्राई करना था, इसको बॉईल करके ले आई। कल जो है वो हाफ फ्राई करके भी ले आई और बॉईल करके भी ले आई, दोनों को देखा उन्होंने ऐसे करके, भाई जिसको हाफ फ्राई किया उसको बॉईल करना था, और जिसको बॉईल करना था उसको हाफ फ्राई करना था। वो अगर इंसान यानी ये सुकून का सबब नहीं हो सकता। सुकून का सबब कहाँ से होगा कि जब पहले दिन से जब आप कैंडल डिनर शुरू करते हैं उस वक्त से लेकर 50वें साल तक अगर आपका रिश्ता कायम है तो ये प्यार और मोहब्बत, ये सुकून बाकी रहना चाहिए। इसलिए जितने दिन गुजरेंगे औरत की कदर कीमत में इजाफा होता है, मर्द की कदर कीमत में इजाफा होता है। तो आप क्या कह रहे होते हैं, मेरा घर, मेरी दुनिया, मेरी गाड़ी, मेरे मोबाइल, मेरी मोटरसाइकिल, मेरे रोज, मेरे घर वाले। लेकिन जब आप शादी हो जाती है क्या कहते हैं, हमारे घर वाले, हमारा घर। देखें ना वैल्यू बढ़ गई ना आपकी। और इसीलिए कहा है कि शादीशुदा की 2 रकत नमाज गैर शादीशुदा की 70 रकात नमाज के बराबर होती है। अल्लाहु अकबर। शादीशुदा 2 रकात नमाज पढ़ के सो जाए, आप 70 रकात नमाज पढ़ें, 35 नमाज सुबह की बराबर है। एक दोस्त कह लेंगे क्यों, कह लेंगे अल्लाह ताला कहेगा तुमसे इतना ही कबूल है बाबा, तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम दो रकअत पढ़ लो वही बहुत है। दुरूद ए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये बहनी ऐसी बात है कि किसी ने कहा मौजिज़ ख़वातीन हज़रात, आपको पता है कि मुल्क की तकदीर सिर्फ बैचलर नौजवान ही तब्दील कर सकते हैं। क्लैपिंग शुरू हो गई, तालियां बजनी शुरू हो गई, होर्डिंग शुरू हो गई, लड़के लड़कियां सब जो है वो क्लैपिंग करने लगे। कहने लगे रुकिए, इसलिए कि जो शादीशुदा है वो अपनी मर्ज़ी से चैनल भी तब्दील नहीं कर सकता। खुदा क्या करे लितस्कुनु इलैहा, सुकून का सबब बने, तो ये सुकून का सबब कैसे बनेगी? ये शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए। चार किस्म की फैमिलीज हैं कुरान करीम में, और चारों की अपनी एक आइडियोलॉजी है, उसके तहत वो जहन्नुमी हैं या जन्नती हैं। पहली फैमिली कुरान ने जो पेश की जिसमें शौहर भी जहन्नुमी है और बीवी भी जहन्नुमी, कौन सी है? अबू जहल, अबू लहब और उसकी बीवी। तब्बत यदा अबी लहब, बीवी भी जहन्नुमी शौहर भी जहन्नुमी। ठीक है ना, अब हम खड़े भी होंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी फैमिली कौन सी है? शौहर जन्नती है लेकिन बीवी जहन्नमी। पहली कौन सी है? हस्बैंड प्लस वाइफ जहन्नम। दो, हस्बैंड पॉजिटिव है और वाइफ जो है वो नेगेटिव है। कौन सी? हज़रत नूह नेक हैं और हज़रत लूत नेक हैं, उनकी बीवियाँ मसलन गर्क हो जाने वाली। तीसरी फैमिली कौन सी है? वाइफ पॉजिटिव है, शौहर नेगेटिव है। कौन सी फैमिली है? हज़रत आसिया और फिरौन। बीवी अच्छी हैं और शौहर जन। और चौथी फैमिली कौन सी है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों जन्नती हैं? दोनों जन्नती हैं। वो कौन है? मौला अली और हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, रसूलुल्लाह और हज़रत खदीजा। आज 10 रमज़ान है, हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की तारीख़ है, रहलत की तारीख़ है। ये दोनों हस्तियाँ रसूलुल्लाह और जनाब खदीजा, ये दोनों जन्नती हैं। मौला अली और बीबी शहजादी कौन हैं? दोनों जन्नत। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस शरीक हयात एक फितरी ख्वाहिश है, लाइफ पार्टनर का इंतखाब। इसके लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए कहा गया कि ज़ाहरी चीज़ों पर इक्तफा मत करो। ठीक है, ज़ाहरी खूबसूरती देखो, ज़ाहरी स्टेटस देखो, लेकिन असल चीज़ जो तुम्हें देखनी चाहिए क्या मायार है? अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि ये इंतखाब का हक हर मर्द और हर औरत का हक है। ये जो इंतखाब करना है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये हक है। इसको अल्लाह भी आपसे नहीं छीन रहा। हक आपका हो, स्टैंडर्ड इस्लाम से लें और तजर्बा वालदेन से लें, वो शादी कामयाब होगी। लेकिन मैं स्टैंडर्ड ख़ुद बनाऊँ, तजर्बा भी खुद लूँ, वालदेन को नज़रअंदाज कर दूँ, ऐसी शादी कामयाब नहीं होती। तो मायार क्या है? मायार क्या है? सबसे पहले क्या? दीन। दीन देखा जाए कि आया दीनदार फैमिली है या नहीं, यानी हलाल खुदा को व हराम खुदा को अहमियत देती है। इसको भी फोकस करते रहेंगे ना तो जी, ताकि नज़र आता रहे दीन। न ये कि बस नमाज़ें पढ़ रहे तो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, या पर्दे कटने पर आए तो वो पूरे पूरे थान लपेट के जा रहे हैं, नहीं, ये दीन नहीं है। हर चीज़ बैलेंस, मुतवाजन ज़िंदगी, ना अफराद ना तफरीद, ना हद से आगे ना हद से पीछे। सबसे पहली चीज़ दीन है। दीन यानी हलाल और हराम की पाबंदी। आजकल हमारे यहाँ दीन का तस्वुर क्या है? नॉर्मल से नमाज़ पढ़ने वाले हैं, आज़ादारी होती है, नज़र नियाज होती है, 22 रजब के कुंडे होते हैं, ये हमारे यहाँ दीन का पहलू है। नहीं, दीन यानी खुदा के हलाल हराम को मद्देनज़र रखने वाला, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अखलाक, बाअखलाक होना चाहिए। कैसे पहचाने? या जिस इलाके में वो रहता है वहाँ जाके तहकीक की जाए, या उसके साथ उठने बैठने वाले दोस्तों से पूछा जाए। सवाल, क्या किसी के बारे में बताना क्या गीबत नहीं होगी? नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहीं। अगर कोई शख्स आपके लिए कारोबार के लिए आता है, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आता है, और आप जानते हैं कि फ़लाँ साहब जो हैं वो मुनासिब नहीं हैं, आप बताएं कि वो शराबी हैं, चोर हैं, मुनासिब नहीं हैं, गुस्से के देते फ़लाँ, आप जो चीज़ें उनके बारे में सही बताएंगे वो गीबत में शुमार नहीं होगा। सही, जहाँ रहता है उससे पूछें या दोस्तों से पूछें। लड़की के बारे में कैसे? लड़की के वालिदैन को देखें और उसके मामुओं को देखें। सही, क्योंकि औलाद पर ननियाल का असर ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ वो क्या है? इल्म, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। पढ़ा लिखने से मुराद सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं है, पढ़ा लिखने से समझदार होना चाहिए, बाअखलाक हो, दीन खुदा, ठीक है ना। कोई जिस्मानी ऐब ना हो, जिस्मानी ऐब से पाक, बज़ाहिर कोई जिस्मानी ऐब ना हो। ये वो ऐब जो शादी की राह में रुकावट बनते हैं, ठीक है ना, उन उयूब से पाक हो, ज़ाहिरी खूबसूरती के लिहाज से भी मुनासिब हो। यानी मैयार खूबसूरती नहीं है, ठीक, अगर है, खुश अखलाक भी है, खुश सीरत भी है, अच्छा इल्म वाला भी है, ठीक है ना, वो भी होना चाहिए। हसब नसब, हसब नसब यानी ख़ानदान के लिहाज से शराफा का ख़ानदान हो। सही, शरीफ लोगों ख़ानदान हो। सैयद और गैर सैयद का मसला नहीं है, ये जाहिलों की बातें हैं जिन्होंने ये मशहूर कर दिया कि जनाब सैयदजादी की शादी जो है वो गैर सैयद से नहीं हो सकती, हो सकती है। ईमान के लिहाज से अगर कुफू हमसर है तो फिर उसको क्या कहा जाता है? उसकी शादी हो सकती है। एक और चीज़ जो इन सबसे पहले बयान कर देनी चाहिए थी, लेकिन उसको अब मैं सबसे आखिर में बयान कर रहा हूँ, और भी शराइत हैं लेकिन मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो है कुफू होना। कुफू यानी हम पल्ला, हम पल्ला, हम पल्ला यानी आपके बराबर का, ये कद में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शौहर जो है वो आलम चन्ना हो, टॉलेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड हो, और बीवी जो है वो मसलन, ये मुनासिब नहीं है। यानी कद के लिहाज से भी होता ही है कि देखा भाई फला का कद ज़्यादा है, बीवी का छोटा, अजीब सा लगेगा। बहल करने वाले करते हैं और खुश भी हैं, हैं हमारे दोस्तों में से जिन्होंने शौहर का कद बड़ा था, बीवी का छोटा, देखना आज बेहतरीन कपल है दुनिया का। कुफू हम पल्ला जिस्मानी लिहाज से भी और ईमान के लिहाज से भी। ईमान, ईमान में सैयद या गैर सैयद फ़र्क नहीं करता, ईमान मोमिन होना चाहिए। अगर सैयद ईमान वाला है और उसके मुकाबले में गैर सैयद बा ईमान वाला है, तो बेहतर यह कि सैयद बा ईमान वाले से शादी की जाए, जो कुफू है। लेकिन अगर सैयद हो रिश्ता लेकिन ईमानदार ना हो, मोमिन ना हो, और गैर सैयद हो लेकिन ईमानदार है, बिस्मिल्लाह कीजिए, शादी कीजिए। सही, कुफो हम पल्ला होना चाहिए, हसब नसब, जिस्मानी अफसब का इल्म, अखलाक, दीन, ठीक है ना। और भी सिफात हैं लेकिन ये वो बुनियादी तरीन सिफात हैं कि जो दर हकीकत शादी के लिए मायार बनती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पहचाना जाए इस दौर में जहाँ मुख्तलिफ इंसानों से मिलते हैं, जहाँ इंसानों के मुख्तलिफ चेहरे होते हैं, जहाँ इंसान مختلف مناسبتوں میں مختلف اسٹیٹس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. کہیں بہت زیادہ دیندار بن جائیں گے, کہیں بہت زیادہ دنیا دار بن جائیں گے. ڈانس کا موقع آئے گا تو وہ اسٹیج پہ ڈانس کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. کوئی ایجوکیشن ہوگی تو اس میں لڑکیوں کے ہاتھ پہ ہاتھ بھی مرتے ہوئے نظر آئیں گے. تلاوت قرآن ہوگی تو سر پہ ٹوپی بھی نظر آ جائے گی. ماہ محرم ہوگا تو کالے کپڑے بھی آ جائیں گے. رمضان ہوگا تو پھر داڑھی بھی سج جائے گی. مختلف قسم کے حالات, مختلف قسم کے عمل اور ایکشنز ہوتے ہیں. کیسے پہچانا جائے کہ یہ میل اور یہ فیمیل, یہ دونوں جو شادی کرنا چاہتے ہیں, یہ کیسے شناخت حاصل کریں؟ پہچان کیسے ہو, یہ بہت اہم سوال ہے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ شادی ہوئی اور سنا تھا کہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے, دیکھا بھی نہیں تھا. جب گھونگھٹ الٹتے تھے تو اس وقت جی پتہ چلتا تھا یہ ہماری محترمہ ہیں, یہ ہمارے محترم ہیں. اب جو بھی ہوتا تھا وہ قبول کرنا پڑتا تھا. اس زمانے میں لالچ بھی نہیں تھی, حوث بھی نہیں تھی, اخلاقیات بھی تھی لوگوں میں, رشتوں کا ادب احترام بھی تھا. جو نصیب میں ہوتا تھا اس کو قبول کر لیتے اور پھر پیار محبت سے اپنی زندگی کی تعمیر کرتے تھے. امام خمینی نکاح پڑھاتے تھے کبھی کبھی, ایک جملہ کہتے تھے جب نکاح پڑھا دیا تو دولہا ادھر ہے دلہن ادھر, کہا کہ جاؤ زندگی کی تعمیر کرو, جاؤ بریت زندگی خود ادھر تعمیر کو نہیں, جاؤ خود بلڈ اپ کرو. یہ جو شناخت ہے شادی سے پہلے, بیفور میرج, یہ شادی سے پہلے ہے. ٹھیک, شادی سے قبل اور ہے شادی کے بعد. شادی کے بعد تو ہو جاتی شناخت. کہتے ہیں کہ میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے میاں سے پوچھا یہ آپ کی رشتہ دار ہیں کیا؟ کہیں گے پہلے نہیں تھی, اب ہو گئی ہیں. ٹھیک, تو شادی کے بعد تو شناخت ہو جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کون کیسا ہے. شادی سے پہلے کی شناخت ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ آپ اس کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے دیکھنے کا حق ہے, بات کرنے کا حق ہے, صحیح اپنے منصوبے بتانے کا حق ہے. مثلا آپ رشتہ لے کے گئے, طے ہو گیا, والدین یہاں بیٹھے ہیں, لڑکے لڑکی کو کمرے میں بھیج دیا جائے, جائیے دروازہ کھلا رہے, بیٹھیں, گفتگو کریں, سوال کریں, جواب کریں. حتیٰ کہ اس حد تک علماء نے اجازت دی ہے صرف انہی کو جن کے بارے میں یقین ہو کہ ان کے ساتھ شادی ہونی ہے, ارادہ ہے. نہ یہ کہ حوث بازی کے تحت آجیے, نہیں, انہی افراد کے لیے کہ جو شادی کرنا چاہتے ہیں, سنجیدہ ہیں, وہ آپس میں در حقیقت چیٹنگ کے ذریعے سے بھی یا ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی یا فون کالز کے ذریعے سے بھی, کہ جس میں مفسدہ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ مفسدہ, یعنی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ اور خیال. جب بھی گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو, جس لڑکی یا لڑکے سے آپ چیٹ کر رہے ہیں شادی کے لیے, اس کی پلاننگ مانگ رہے ہیں, وہ اپنی بتا رہے ہیں, اپنے ویوز بتا رہے ہیں, مفسدہ جہاں آ جائے گا وہ چیز حرام ہو جائے گی. واضح بات, مفسدہ نہ ہو. بات کر سکتے ہیں, فون کال کر سکتے ہیں, لمیٹڈ سوال جواب ہوں گے, لمیٹڈ جو ہے وہ گفتگو ہوگی, لمیٹڈ پیرائے میں, ٹھیک ہے نا, ہر چیز ہوگی, تاکہ ایک کمحق و ایک امیج جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے. نہ یہ کہ شروع ہو گئے تو بس شروع ہو گئے, کیا پہنتے ہو, کیا کھاتے ہو, دادی کیسی ہیں, اماں کیسی ہیں, خالہ کیسی ہیں, چچا کیسے ہیں, کیسا وقت گزرا, کیسا وقت, روزہ بہت سخت تھا, پیاس بہت لگ رہی تھی, اس قسم کی چیزیں نہیں. ٹھیک ہے, بات کرنے کی, دیکھنے کی اجازت ہے جس سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں. مل سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, تاکہ ایک شناخت حاصل ہو جائے. اچھا, کیا یہ شناخت اور یہ ساری چیزیں کیا اس بات کا سبب بن سکتی ہیں کہ یہ میل اور فیمیل, لڑکا لڑکی جو رشتہ ازدواج منسلک ہو رہے, ایک ساتھ زندگی گزار لیں؟ जी हाँ, अगर नियत खालिस हो तो इन शराइत के मुताबिक जब दो बोल अनकाह तो कबिल तो पढ़े जाएंगे, अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान एक मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता कायम कर देता है कुदरती तौर पे। यानी जिसको मैं कहूँ कि एक आप हैं और एक आप ही हैं जो आपके वजूद से अलग है, आपकी बीवी की शक्ल में वो भी आप ही है, यानी एक जान दो जी, एक जान दो कालिब, जान रूह एक है लेकिन दो जिस्मों में होती है, सही। वो काफ़ी हो सकती है एक शर्त के बिना पर। कैसे काफ़ी हो सकती है शनाख्त? इस सूरत में हो सकती है कि जब दोनों रेडी हों एक दूसरे के वीक पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स को कबूल करने के लिए, मेल में भी और फीमेल में भी, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों में होंगे। कामिल कोई नहीं है यहाँ, बेऐब कोई नहीं है, इल्म अखलाक का शहजादा कोई नहीं है, दुनिया का खूबसूरत तरीन जोड़ा कोई नहीं है, कोई ना कोई ऐब ज़रूर होगा, कोई ना कोई झोल ज़रूर, कोई ना कोई नुक्स और कमी ज़रूर होगी। उन तमाम शराइत के बाद खुलूस नियत से अल्लाह के लिए उसके किरदार, उसके अखलाक, ठीक, उसके हिजाब, अब लड़की आएगी तो उसमें हिजाब देखा जाएगा, उसमें शर्म हया देखी जाएगी, ठीक है ना, लड़की में भी उसमें शर्म हया है, हिजाब है, हलाल हराम की पाबंदी करती है, अखलाक कैसा है, बद अखलाक तो नहीं है। इसीलिए कहा कि इया का व खदराए दमन, के गंदे नाले में उगने वाली सब्ज़ी से बचो। इमाम से पूछा, मासूम से पूछा क्या मतलब, कहा कि वो लड़की कि जिसकी शक्ल तो खूबसूरत हो लेकिन उसके अखलाक बहुत ही बुरे हों, ऐसी लड़की से शादी मत करो। और फिर उसमें रिवायत में जब आएंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई, इस वक्त मौका नहीं कि मैं उन तमाम रिवायत को बयान करूँ या वो खुश करने का सबब बनेगा। मैं सिर्फ एक व्यू देना चाह रहा हूँ ताकि आपके जहन में आए कि इस्लाम ने क्या कहा है। ये तमाम चीज़ें, जान पहचान, मेल मिलाप, ये सिफात जब ओके हो गई, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया, पसंद कर लिया, उसके बाद जनाब ओके हो गया, अब जो है वो मंगनी कर रहे हैं, यह इमाम ज़मीन बन रहे हैं, ठीक। क्या मंगनी, एक सवाल ये पैदा होता है, क्या मंगनी के बाद भी मंगेतर एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हैं? सवाल, जी हाँ, वो गुफ्तगू जिसमें कोई मफसदा गैर अखलाकी गुफ्तगू और बुराई ना हो, वो बातें जिससे अपनी आइंदा ज़माने के लिए आप प्लानिंग कर सकें, ठीक। बहुत से लोगों से निकाह कर देते हैं, या मसलन ईरान में सीगे महरमियत पढ़ दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि उनका उठना बैठना, हाथ मिलाना जो है, आना जाना वो जायज़ और मुबाह हो सके, ठीक है ना, क्योंकि बहरहाल उसका महरम है, उसको लेके जाएगा आएगा तो सीगे महरमियत पढ़ दिया जाता है। बहरहाल ये शिनाख्त क्या काफ़ी है? खूब सवाल यह है कि क्या मंगेतर गुफ्तगू कर सकते हैं? कर सकते हैं। किस सूरत में? एक, मफसदा ना हो, दो, गुनाह की बातें ना हो, तीन, फालतू बातें ना हो, और चौथा ये कि वो बातें कि जो आपकी ज़िंदगी की बुनियादों को मुस्तहकम कर सके। ये शिनाख्त और ये पहचान सही इस सूरत में खालिस नीयत के साथ आपके काम आएगी कि जब आप एक दूसरे की बुराइयों और खामियों और खूबियों को कबूल करने के लिए तैयार हो जाएं। शायद बहुत सारी खामियां दो साल, डेढ़ साल, छः महीने में आपके सामने ना आई हों, मंगने के बाद भी नहीं आती, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उसका एक एटीट्यूड था, वो एक ख़ास मौके पर, एक ख़ास टर्निंग पॉइंट पर शो होना था, वो टर्निंग पॉइंट आपके छः महीने की मंगेतरशिप में जो है वो नहीं आया, वो नहीं फटा, उसने, उस लड़की ने गुस्सा नहीं किया। किसी मौके पर हो सकता है कि वो टर्निंग पॉइंट आ जाए, और वो तो ये बात याद रखिएगा कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड को और उसके बिहेवियर को कबूल करने के लिए तैयार हों। उस सूरत में शादी कामयाब हो सकती है, उस सूरत में در حقیقت آپ جو ہیں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور پھر آپ یعنی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے مکمل ہوتے ہیں. مکمل مکمل نہیں مکمل مکمل یعنی ایک دوسرے کی پرفیکشن کے لیے، ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے، ایک دوسرے کو لباس دینے والے، ایک دوسرے کو عزت اور آبرو دینے والے. اس کو کہتے ہیں مکمل. مکمل یعنی تکمیل کرنے والے، ایک دوسرے کے وجود کو گروتھ دینے والے. صحیح. اس صورت میں جو ہے وہ پہلے کی شناخت، خلوص نیت، اور پھر ایک دوسرے کی برائی اور اچھائی کو قبول کرنے کے لیے تیار افراد جو اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو ناپسند ہوتی ہیں، اس لیے کہ شادی جو ہے، شادی وہ ایک چھت کے نیچے میل اور فیمیل کے زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے. ایک چھت کے نیچے میاں بیوی آ کے رہنے لگے، نہیں، بلکہ یہ ایک الگ تہذیب سے، یہ الگ ثقافت سے، اس کا مزاج الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے، اس کا گھرانہ الگ ہے، اس کا گھرانہ الگ ہے، اس کی ایجوکیشن الگ ہے، اس کی ایجوکیشن لائن کچھ اور تھی، یہ میڈیکل کا ہے، وہ انجینئر کا ہے، وغیرہ وغیرہ. دونوں کا مزاج الگ الگ ہے، دو ثقافتیں ہیں جو جی جو یوں کہوں کہ دو تلواریں ہیں جو ایک نیام میں ہیں، کسی بھی لمحے چل سکتی ہیں اگر چلنا چاہیں، لیکن وہ ضروری دو تلواریں ہی ہوں. وہ دو پھول بھی ہو سکتے ہیں، وہ دو دل بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. لہذا ان تمام ڈفرینسز کے ساتھ، اسے فاسٹ فوڈ اچھا لگتا ہے، آپ کو دیسی غذائیں اچھی لگتی ہیں، اس کو وہ کلر پسند ہے، مجھے یہ کلر پسند ہے، مجھے یہ لائف اسٹائل پسند ہے، اس کو وہ لائف اسٹائل پسند ہے، یہ نیچرل چیزیں ہیں. یہ آپ کے بہن بھائیوں میں بھی ایک ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان تمام ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ایک دوسرے کی برائی، اچھائی، نگیٹو، پازیٹیو، مثبت اور منفی پہلو کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک دو یہ کہ ایک دوسرے کی اصلاح اور تکمیل کرنے والے ہوں. اگر طے ہو کہ شوہر بیوی کی کاموں میں کیڑے نکالے اور بیوی شوہر کے کاموں میں، تو پھر یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکے گا اور زندگی اجیرن ہو جائے گی. مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ جہاں ہم جب دیکھنے کا موقع آتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھو، تو ناک دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کا رنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بالوں کی پیمائش کر رہے ہوتے ہیں، بال کتنے بڑے ہیں، قد کتنا اونچا ہے، بہن بھائی کتنے ہیں، فیملی چھوٹی ہے بڑی ہے، والد کیا کرتے ہیں، جہیز کتنا ملے گا، لڑکے کا اسٹیٹس کیا ہے، لڑکا کہاں جاب کرتا ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو دیکھنی چاہیے ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہذا اصل میں پھڈے، لڑائی، جھگڑے، ناچاقی، یہ ساری چیزیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جب ایک دوسرے کے مزاج ٹکرانے لگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی اور چیز کو دیکھا تھا، ان چیزوں کو نہیں دیکھا تھا. لہذا شادی ہو گئی، شادی ہو گئی تو اب چونکہ مزاج نہیں ہے، ایک دوسرے کے مکمل نہیں ہے، ایک دوسرے کے لباس نہیں ہے، لہٰذا یہاں سے کیا ہے، یہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ اختلافات صرف شادی کے شروع میں نہیں، بچے ہونے کے بعد، بچوں کے بچے ہونے کے بعد بھی، یعنی دادا دادی یا نانا نانی بننے کے بعد بھی یہ اختلافات چلتے رہتے ہیں. دیکھیں ہم نے کہ دادا بن گئے ہیں، نانا بن گئے ہیں، نانی بن گئی ہیں خاتون، دادی بن گئی ہیں، پھر بھی جو ہے وہ میاں بیوی اسرائیل اور ایران کی طرح لڑ رہے ہیں. خیر، یہاں تک بات واضح ہے. یہ وہ شناخت ہے کہ جو در حقیقت سبب بنے گی کہ آپ ان ڈفرینسز کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کچھ اور ڈفرینسز ہیں، کچھ اور فرق ہیں مرد و عورت میں، کہ جو میں جلدی سے بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. یہ جو فرق ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، یہ چیزیں بہت زیادہ کام آئیں گی آپ کے، کہ جب آپ جو ہیں وہ انشاءاللہ اس مرحلے میں جائیں گے. مردوں کو خاموشی زیادہ پسند ہوتی ہے بنسبت خواتین کے, یہ نیچرل ہے. ابھی ہنسی ہے نہیں, آپ کی باری بھی آ رہی ہے, ادھر سے ہنسی آئے گی پھر. ہاں, مردوں کو سکوت اور خاموشی پسند ہوتی ہے, خواتین کو سکوت اور خاموشی پسند نہیں, شور شرابہ تھوڑا سا ہلا گلا پسند ہوتا ہے. ہاں, مرد زیادہ منظم نہیں ہوتے اپنے کاموں میں. جی جی, خواتین منظم ہوتی ہیں اپنے کاموں میں. لڑکوں کا کمرہ جا کے دیکھ لیں, لڑکیوں کا کمرہ جا کے دیکھ لیں ہاسٹل میں, پتہ چل جائے گا. لڑکوں کے لیپ ٹاپ کا ڈیسک ٹاپ دیکھ لیں اور لڑکیوں کے لیپ ٹاپ کا ڈیسک ٹاپ دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا آپ کو. ایک نیچرل چیز ہے یہ. مرد اوسطاً ایوریج 14,000 لفظ بولتے ہیں دن میں, اور خواتین ماشاءاللہ سے 26,000 الفاظ بولتی ہیں, چونکہ کمیونیکیشن برقرار کرنا چاہتے ہیں. لڑکے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں, لڑکیاں جلدی بولنا شروع کرتی ہیں. ایک مزے کی بات بتاؤں, خواتین ناقص العقل ہوتی ہیں نا؟ نہیں ہوتی ہیں. خواتین میں عقل جو ہے مردوں سے پہلے آتی ہے, پہلے بالغ ہوتی ہیں نا, جو بالغ پہلے ہوتا ہی نہیں. پہلے عقل آئی اللہ کی عبادت کے لیے, پہلے مرد سے پہلے عورت اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی ہے, یعنی اس کی وہ میچیور پہلے ہوتی ہے, مرد بعد میں ہوتا ہے. ہم ڈنر پیٹتے تھے مرد 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 مرد, اللہ کہتا ہے لیڈیز فرسٹ. لیڈیز فرسٹ کا نعرہ انگریزوں کا نہیں ہے, لیڈیز فرسٹ کا نعرہ جو ہے اللہ میاں کا ہے. پہلے عورت میری بارگاہ میں کہ بعد میں مرد آئے گا؟ پہلے عورت جو ہے وہ عاقل ہوگی, بالغ ہوگی, بعد میں مرد ہوگا. جی, وہ کسی اور پیرائے میں ہے. مردوں کو جو ہے نا وہ آواز سنائی کم دیتی ہے. ایک وقت میں ایک ہی کام کریں گے, اگر وہ ایک کام کرے تو ایک ہی کام دو کام نہیں کر سکتے. مثلا بیگم کہیں سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہا ہوں. وہ اپنے کام مصروف ہوگا. جی میں نے کیا کہا, کیا کہہ رہی ہو دوبارہ؟ آپ نے اب گھر میں دیکھ لیں, امی کچھ کہیں گے ابو سے تھوڑا, ابو کہیں جی کیا کہا؟ ایک وقت میں ایک کام. لیکن خواتین ایک وقت میں دو سے زیادہ کام کر سکتی ہیں. مرد ایک وقت میں ایک ہی کام کرے گا. اچھا, مردوں کو قریب کی چیزیں نظر نہیں آتی. جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی, بیگم میرے موزے کہاں ہیں؟ ارے بھائی ڈراؤز میں پڑے ہوئے ہیں. یا مثلا امی ہیں تو امی موزے کہاں ہیں؟ میرے ٹی شرٹ نہیں مل رہی ہے. امی آئیں گے ڈراؤز سے نکالیں, یہ کیا پڑا ہے دیکھو. یہ مردوں کے ساتھ ہے قریب, کیونکہ وہ شکار کرنے جاتے تھے, دور کی چیزیں دیکھتے تھے ایسے کر کے, تو دور کی نظر بہت تیز ہے ان کی, قریب کی نظر کام نہیں کرتی. اچھا, عورتوں میں مائنڈ کیلکولیشن نہیں ہوتا ہے. مثلا یہ جگہ ہے صحیح, یہاں ایک ٹیبل رکھی ہے. خاتون اگر چاہے گی کہ اس ٹیبل کو یہاں رکھے, پہلے ٹیبل کو ناپے گی, 1 2 3 4 ناپ لیا, پھر جا کے دیوار کو ناپیں گی, 1 2 3 4. بچہ 12 سال کا ہوگا, مما یہ ٹیبل یہاں نہیں آ سکتی, خاموش رہو, بلوا دیا مجھے, 1 2 3 4, ماما نہیں آ سکتی, خاموش رہو. نہ کہے گی ہاں صحیح کہہ رہا ہے. بچے مردوں میں مائنڈ کیلکولیشن بہت ہوتا ہے, اس لیے وہ ڈرائیونگ میں شارپ ہوتے ہیں, خواتین اتنی شارپ نہیں ہوتی ہیں. صحیح, یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. مرد جو ہیں وہ کمیونیکیشن میں, رابطہ اور تعلقات برقرار میں, باتوں کے علاوہ دوسری چیزوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. خواتین رابطہ برقرار کرنے میں باتوں پہ زیادہ اکتفا کرتی ہیں, لہذا خواتین کو باتوں, چکنی چپڑی باتوں سے جلدی بے وقوف بنایا جاتا ہے. ستارے توڑ لاؤں گا, ایسا کر دوں گا, ویسا کر دوں گا, فلاں کر دوں گا, یوں کر دوں گا, وہ بیچاری بے وقوف بن جاتی ہے. تو ہوشیار ہیں خواتین. مرد جو ہے وہ باتوں کے بجائے اپنی باڈی لینگویج دوسری چیزوں کو مثلا زیادہ یوز کرے گا, خواتین باتوں کو زیادہ یوز کرتی ہیں. مردوں میں فیلنگس کو فیل کرنے کا احساس بہت کم ہوتا ہے. بیوی یا ماں یا بہن ناراض ہے, ڈیم کیئر, کوئی پرواہ نہیں ہوتی, معذرت کے ساتھ مرد حضرات کو, मगर ये कि पूरी अली से लेकर ये तक कहानी जब तक ना सुनाई जाए वो मुतवज्जो नहीं होता मेरी माँ या मेरी बहन या मेरी बीवी क्यों नाराज़ है। वो आएगा नौरा अपने काम में हो जाएगा, अच्छा ठीक है सर पर पट्टी बनी हुई बेगम के यहाँ क्या होगा ठीक है। बाज़ औक़ात जो होता है कि ख़वातीन अपनी बिहेवियर के ज़रिए से आपकी अटेंशन चाह रही होती हैं, वो आपसे राह इलाज नहीं चाह रही हैं, वो गांव से पढ़ के नहीं है कि उसको नहीं मालूम कि सर में दर्द होता है तो डिस्प्रिन या पेनाडोल खा लेते हैं। बीवी सर में दर्द बुखार हो रहा है पेनाडोल खा लो डॉक्टर के ले चलो ज़्यादातर ये करेंगे नहीं, उसको ज़रूरत है फीलिंग्स के लिहाज से, उसको फील करने के लिए। औरतों की सबसे ज़्यादा बीमारियाँ उनको फील ना करने की वजह से होती हैं, ये बात याद रखिएगा। उनकी जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील वो एक अलग चीज़ है। ख्वातीन में सबसे बड़ी बीमारी किस वजह से होती है, उनको फील ना करने की वजह से। मर्द बाप भाई बेटा अगर माँ बीवी बहन बेटी को फील ना करे वो औरत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। ख्वातीन बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को महसूस करती हैं, इजहार करती हैं, इसीलिए चॉइस का ऑप्शन मर्दों में कम होता है ख्वातीन में ज़्यादा होता है। शॉपिंग में जाएंगी घंटों लगाएंगी, एक ही शेड के कई शेड निकलवाएंगी, मर जाएगा चार शेड देखेगा पांचवां खरीद के ले आओ पसंद किया चल दो या अल्लाह चैलेंज छुट्टी। ख्वातीन दो घंटे इधर फिर वापस उसी दुकान पर जाएंगी जहाँ पाँच थान खुलवाए थे जी वो अच्छा लग रहा था ये अच्छा लग रहा था। ओ शादी करने से पहले जिगर थाम के बैठिएगा कि आप किस जो है वो शेर की वादी में कदम रख रहे हैं। ये दिल लगी इतनी नहीं आसान मसल इसे जानो ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। वो कहते हैं ना कि वो निकाह हो रहा होता है वो कहते हैं अनकाह तो मोक शहर मालूम, वो कहते हैं मालूम, वो बेचारा बुद्धू जो होता है उसे ही नहीं मालूम होता क्या क्या मालूम कर रहा हूँ, वो कह रहा अभी मालूम हो जाएगा बेटा सबर कर जाओगी। तो ये अभी से बता रहा हूँ कि मालूम कर ले, अब तक ऐसा ना नहीं क्या मालूम अभी मौलाना इधर फिर मौलाना उधर देखेंगे। मर्द अच्छे सुनने वाले नहीं होते, ये सारे ड्रामे ढकोसले जो होते हैं ना मर्दों को शादी से पहले होते हैं। हाँ मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, तुम कहो मैं तुम्हें सुनने के लिए बेताब हूँ फला हूँ ड्रामा हूँ ढिमका हूँ ये सब हो, शादी के बाद कुछ नहीं। ख्वातीन अच्छी लिसनर होती हैं, तवज्जो से सुनने वाली होती हैं। मर्दों में छूने की सुनने की और सूंघने की हिस कम होती है, ख्वातीन में ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ बैठी होंगी कई दफ़ा ऐसा हुआ घर वाले कहे जरा देख लिए कि मैं जा रही हूँ चूल्हे पे कुछ रखा अच्छा या वो किसी काम मसरूफ़ थी सालन जल गया हमें पता ही नहीं चला, आपको बू नहीं आई नहीं बू नहीं आई। बीवी 50 कदम दूर होगी ना औरत वो सूंघ के बता दी कि कुछ जल रहा है आप घर में देख लें। क्यों? क्योंकि औरत ने दर हकीकत बच्चे की निगहदाश्त करनी है बहुत सेंसिटिव चीज़ की, तो अल्लाह ताला ने उसको ये सलाहियत दी है। मर्द में रखरखाव बहुत कम होता है, रख रखो ख़वातीन में ज़्यादा होता है, बहुत फॉर्मल से होते हैं मर्द ठीक है ना, और वो समझ रहे नहीं हम बहुत हैं। मर्द जो हैं चश्म आँखों से आशिक होना पसंद करते हैं या आशिक करना ज़्यादा पसंद करते हैं या मोहब्बत का इजहार वो आँखों से ज़्यादा करते हैं और ख़वातीन बातों के ज़रिए से। इसलिए मैंने कहा ख़वातीन की अक्सर नफ्सियात बीमारियाँ उनसे बातें ना करने की वजह से उनको फील ना करने की वजह से होती हैं। मर्द चेहरों को जल्दी भूल जाते हैं ख्वातीन देर तक याद रखती हैं। मर्द जो हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं कुल से जुज पर आएंगे, ख्वातीन जुज से कुल पर जाएंगी। मसलन एड्रेस बताना हूँ आप कहेंगे तशरीफ लाइए अल मेहदी अकेडमी का एड्रेस उल्टे हाथ की मसलन पाँचवीं गली या चौथी गली कॉर्नर का मकान है मस्जिद के सामने ख़त्म। ख़वातीन एड्रेस बताएंगी कैसे? आप सीधे सीधे आएंगे ना वहाँ एक पेड़ लगा होगा उस पर एक बैनर टका होगा जी, वहाँ से गड़ी थोड़ी सी मोड़ लाइएगा वहाँ एक बत्तख खड़ी होगी वहाँ से वहाँ नहीं रुकिएगा, वहाँ सीधा आइएगा, वहाँ पे एक और पेड़ होगा, वहाँ से उल्टा है तो मुड़िएगा, तो फिर वहाँ किसी से पूछ लीजिएगा, घर का पता नहीं बताएंगे, A52 अलमेदी अकेडमी क्या है, ख़वातीन क्या हैं, जूस से कुल पे जा रही है, छोटी छोटी चीज़ों से पते बता रही होती हैं। अब कई दफ़ा होता ही है कि आप घर में देख लेगा किसी अननोन आदमी को आपकी अम्मी और बहन और बीवी पता बता रही होगी, तो ऐसे बता रही होगी, आप सर पीटेंगे भाई घर का एड्रेस बता दो, वो दुनिया भर के पत्थर और जानवर और जो है दरख्त सब कुछ ला के जमा कर देंगी, घर का पता नहीं बताएंगी कि A52 है, B52 है, C14 क्या है। बहरहाल ये मसाइल रहते हैं, बहरहाल तो ये डिफरेंसेस हैं, इनको समझना चाहिए, ये हंसी मजाक के हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इनको जहन में रखना चाहिए, और इनसे ये होगा कि आपको एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। इसकी और भी बहुत सारी न्यू गाँव के बातें हैं जो फ़िलहाल मैं इसे सरफ नज़र कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल का टॉपिक जो है वो SMS के ज़रिए से आप तक पहुँच जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सवाल ये है कि शादी किस एज में की जाए, जब इंसान इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो, मैच्योर हो जाए, जिस्म का मैच्योर होना ज़रूरी नहीं है, अकल का मैच्योर होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के लिए एक ही हो। एक अच्छी एज जो है वो इस ज़माने में 24 साल 26 साल है, जिसमें एक नौजवान को शादी कर लेनी चाहिए, एक मैच्योर एज होती है, ठीक है ना, इसलिए कि हम प्री मैच्योर लोग हैं, हमारा जो हमारी यूथ है वो प्री मैच्योर है, यानी अपने वक्त से पहले बालिग होने वाली है, ज़हनी तौर पर उसका IQ लेवल बहुत तेज़ है। इस बने पर 26 साल में एक नौजवान लड़का और लड़की पुख्ता मर हो जाते हैं। अच्छा, डिफरेंस कितना होना चाहिए, एक एवरेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 साल से लेकर इस ज़माने में 8 साल और 10 साल तक बयान किया गया है, 10 साल से ज़्यादा जो है वो कहते हैं इस ज़माने में मुनासिब नहीं है, 3 साल मिनिमम और मैक्सिमम 8 से 10 साल तक, 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 26 हो गए आप, ठीक है, अल्तमा से दुआ। उससे मुराद ये है कि आइडियोलॉजी के तहत जो है वो अपनी बीवी अपना शौहर तलाश करे, अगर आइडियोलॉजी के मुताबिक अपनी नेक बीवी तलाश करोगे तो वो जो है शादी कामयाब होगी।